स्वागत है आपका दिन भर में। आज है 13 मई, दिन शुक्रवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। 2008 मालेगांव धमाका मामले में एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा और 5 अन्य के खिलाफ लगे चार्ज हटाए, विपक्षी दलों ने किया जमकर विरोध।
ये बड़ी शर्मनाक बात है कि इंसाफ और सच्चाई का गला घोटने की खुलेआम कोशिश की जा रही है सिर्फ इसलिए कि सरकार बदल गई है।
हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग को लेकर फरवरी में हुई हिंसा और तोड़फोड़ पर जांच समिति ने राज्य सरकार को सौंपी रिपोर्ट। और विवेचना में सुनिएगा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की वो कहानी, जब एक मौके पर पाकिस्तानी नौसेना भारतीय नौसेना पर भारी पड़ी थी।
कहने लगा कि घबराना मत, बात कुछ नहीं है, ही इज वन ऑफ द सर्वाइवर्स और कुकरी टॉर्पीडो हुई है। द मिनट ही सेड कि सर्वाइवर है, मेरा माथा थनका।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मालेगांव ब्लास्ट मामले की चार्जशीट से साध्वी प्रज्ञा समेत 6 अन्य अभियुक्तों के नाम हटा लिए हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह से मकोका भी हटा लिया गया है। जांचकर्ताओं ने अदालत से कहा है कि साध्वी और 6 अन्य अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। 2008 में मालेगांव के अंजुमन चौक तथा भीकू चौक पर हुए धमाकों में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 101 घायल हो गए थे। मुस्लिम बहुल शहर मालेगांव में धमाके के आरोप में हिंदुवादी संगठनों पर लगे थे। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जांच में दखल देने के आरोपों को खारिज किया है। जर्मनी की संसद के निचले सदन ने अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया को सुरक्षित राष्ट्र घोषित करने के प्रावधानों को पारित कर दिया है। इसे शरण मांगने वालों को रोकने के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। मानवाधिकार समूहों ने इन नए प्रावधानों की आलोचना की है। जर्मनी के गृहमंत्री थोमास डे माइजीरे का कहना है कि इन देशों से आने वाले अधिकतर लोगों का कारण शरण से संबंधित नहीं होता है। उन्होंने कहा, 2016 में इन देशों से आकर शरण मांगने वाले 99% लोगों को शरण नहीं दी गई है। इस नए विधेयक से हम शरण मांगने वालों की अर्जियों के निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी ला सकेंगे। चीन की सरकार ने कहा है कि वह अपनी सेना में बड़े सुधार करेगी और साल 2020 तक चीनी सेना साइबर युद्ध लड़ने में सक्षम होगी। चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना प्रकाशित की है, उसका उद्देश्य विश्व स्तर की सेना विकसित करना है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, लेकिन अब चीन का नेतृत्व सैनिकों की संख्या में कटौती कर नई सैन्य तकनीक में अधिक निवेश करना चाहता है। पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में जारी विवादों के मद्देनजर चीन अपनी नौसेना और वायुसेना पर भी अधिक खर्च करेगा। लेबनानी चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह के सीरिया में सर्वोच्च कमांडर मुस्तफा बद्रुद्दीन की राजधानी दमिश्क में हुए एक हमले में मौत हो गई है। हिजबुल्लाह से नजदीकी वाले लेबनान के एक टीवी चैनल ने चरमपंथी समूह के हवाले से इसराइल को हमले के लिए जिम्मेदार बताया है, हालांकि बाद में दावा वापस ले लिया गया। लेबनान की संसद में हिजबुल्लाह के एक सांसद ने कहा है कि इसराइल ही इस हत्या के पीछे है। मुस्तफा बद्रुद्दीन हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह के बाद दूसरे नंबर पर थे। दक्षिण अफ्रीका के हाईकोर्ट ने उन हजारों पूर्व खनिकों की सामूहिक कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है। इन खनिकों का कहना है कि भूमिगत कार्य करने से उन्हें फेफड़ों की बीमारी सिलिकोसिस हो गई है। खनिक देश की सोना खदानों से करोड़ों रुपए का हर्जाना मांग रहे हैं और यूरोपीय संघ की सीमा एजेंसी फ्रंटेक्स का कहना है कि अप्रैल में ग्रीस पहुँचने वाले प्रवासियों की तादाद में बड़ी कमी आई है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने अभी समाचारों में सुना, एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2008 के मालेगांव धमाकों के मामले में विशेष एनआईए अदालत में जो पूरक चार्जशीट दाखिल की है, उसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और 5 अन्य अभियुक्तों के खिलाफ लगे सभी चार्ज सबूतों के अभाव में हटा दिए हैं। एनआईए ने इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ मकोका हटाने की सिफारिश भी की है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 में हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। सुनिए अश्विन अघोर की रिपोर्ट।
मुंबई के विशेष एनआईए अदालत में आज दायर किए गए अंतिम रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह समेत अन्य सभी अभियुक्तों के खिलाफ मकोका के तहत मामला चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिल सके हैं। एजेंसी के अनुसार साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने की वजह से न सिर्फ उनका नाम चार्जशीट से हटा दिया गया है बल्कि उन पर लगा मकोका कानून भी हटा दिया गया है। यह धमाका महाराष्ट्र के मालेगांव शहर के शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट के सामने हुए थे और इस धमाके में एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 101 लोग घायल हो गए थे। इस निर्णय को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई है। जहां एक ओर भाजपा के खेमे में खुशी की लहर दौड़ रही है, वहीं कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इस निर्णय को राजनीतिक दबाव करार दे रही है। भाजपा के प्रवक्ता माधव भंडारी ने इस बारे में कहा,
2008 में जब आयन दीपावली के मौके पर साध्वी प्रज्ञा सिंह को अरेस्ट किया था और साध्वी को सामने रखते हुए ये जताने की कोशिश की गई थी कि भारत में भगवा आतंकवाद फैल रहा है, भारत का हिंदू समाज भी आतंकवादी है, ये दिखाने की एक कोशिश की गई, एक साजिश थी।
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने इस कदम को मुंबई एटीएस के पूर्व प्रमुख हेमंत करकरे की शहादत का अवमान बताया है।
पूरी तरह से एनआईए ने जिस तरह चार्जशीट में 2008 के आरोपियों को क्लीन चिट दी है, ये एक तरह से पूर्व एटीएस चीफ शहीद हेमंत करकरे का अपमान करने का काम किया गया है।
इस मामले की शुरुआती जांच महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते ने की थी जो बाद में एनआईए को सौंपी गई थी। एजेंसी ने अदालत को बताया कि तफ्तीश के दौरान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य 5 अभियुक्तों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले तथा इन पर मकोका के तहत कोई मामला नहीं बनता है। एजेंसी ने अदालत में दायर चार्जशीट में कहा है कि महाराष्ट्र एटीएस द्वारा दर्ज किए गए इकबालिया बयानों के आधार पर इन अभियुक्तों के खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज नहीं हो सकता। साथ ही एजेंसी ने अदालत से गुजारिश की है कि अन्य अभियुक्तों के खिलाफ तफ्तीश जारी रखी जाए।
मुंबई से जानकारी दे रहे थे अश्विन अघोर। साध्वी प्रज्ञा को एनआईए की क्लीन चिट के बाद भारत में राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, जबकि सत्ताधारी बीजेपी का कहना है कि एनआईए की जांच में सरकार का कोई दखल नहीं। हालांकि साध्वी प्रज्ञा के परिवार ने एनआईए के इस फैसले का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर भी इस खबर पर खूब चर्चा हो रही है। सुनिए जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
कुछ समय से ही मालेगांव बम धमाकों के अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने केंद्रीय सरकार से अभियुक्तों के खिलाफ मकोका हटाने के लिए इजाजत मांगी थी। केंद्र ने जवाब दिया था कि एजेंसी वही करे जो उसे ठीक लगता है। इस मुकदमे के कई गवाहों के अपने बयानों से मुकरने के बाद केस और भी कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा था। अपेक्षा अनुसार एनआईए ने आज मुंबई की एक विशेष अदालत में पूरक चार्जशीट दायर की जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह और 6 अन्य अभियुक्तों के नाम नहीं हैं। एजेंसी ने इन सभी अभियुक्तों को मकोका से बरी करने की सिफारिश की है। विपक्ष की तरफ से इसके खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने कहा, केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह के अनुसार एनआईए का ये फैसला शर्मनाक है।
ये शर्म की बात है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो कि आतंकवादी गतिविधियों के जांच के लिए बनाई गई थी, आज उन्हें बचा रही है जो स्पष्ट रूप से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। कि मैं निंदा करता हूं एनआईए के उस बयान की जिसमें हेमंत करकरे जैसे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ शहीद के ऊपर निंदनीय आरोप लगाए हैं, मैं इस बात की निंदा करता हूं।
मुंबई के आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एटीएस ने पुलिस अफसर हेमंत करकरे के नेतृत्व में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पिरोहित समेत 14 लोगों के खिलाफ मालेगांव बम धमाके में शामिल होने का मुकदमा चलाया था। कुछ साल पहले केस को एटीएस से वापस लेकर एएनआई को सौंप दिया गया था। कुछ लोगों का आरोप है कि 2014 में नई सरकार आने के बाद मुकदमे का रुख बदलने लगा। वरिष्ठ वकील मजीद मेमन कहते हैं,
ये बड़ी शर्मनाक बात है कि इंसाफ और सच्चाई का गला घोटने की खुलेआम कोशिश की जा रही है सिर्फ इसलिए कि सरकार बदल गई है। सरकार के बदल जाने से सच्चाई या इंसाफ के मापदंड नहीं बदलते और जो हादसावाद या वारदात हो चुकी है आतंकवादी, उसमें जो सही गुनहगार हैं उनको किसी सूरत में बख्शना नहीं चाहिए। बदकिस्मती से हमने ये देखा है पिछले कई सालों में कि कहीं तो गुनहगारों को दोषियों को बचाने की कोशिश होती है और कहीं मासूमों को फंसाने की कोशिश होती है, बहुत दुख की बात।
लेकिन एनआईए के अनुसार प्रज्ञा के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले और ये कि एटीएस की जांच में कमियां थीं। केंद्र सरकार ने भी प्रज्ञा और दूसरे अभियुक्तों को बचाने की कोशिश से इनकार किया। उप गृह मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकारी एजेंसी और अदालत के कामों में उनकी सरकार दखल नहीं देती।
वी डोंट इंटरफेयर इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। नाउ द
हम जांच में हस्तक्षेप नहीं करते। जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। अब जो कुछ भी है वो अदालत के पास है। हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं और हमें इस पर कुछ कहना भी नहीं। ये थे शब्द उप गृह मंत्री किरण रिजिजू के। एनआईए ने जिन अभियुक्तों के खिलाफ अदालत से जांच जारी रखने की अनुमति मांगी है उनमें कर्नल पिरोहित के अलावा 6 और अभियुक्त शामिल हैं। अब सभी को अदालत के फैसले का इंतजार है। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
बीते फरवरी महीने में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के आंदोलन के दौरान हरियाणा में जमकर हिंसा हुई थी। कई दिनों तक हरियाणा पूरी तरह ठप रहा था। उसके बाद हरियाणा सरकार ने सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया, जिसने आज अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर को सौंप दी। हालांकि जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, मगर उसमें सरकार के कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को इसके लिए दोषी ठहराया गया है, क्योंकि उन्होंने हिंसा रोकने के लिए कोई पहल नहीं की थी। एक रिपोर्ट के साथ सलमान रावी।
फरवरी में हुए आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में 30 लोग मारे गए थे, जबकि लगभग 350 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। एक बार तो ऐसी नौबत भी आ गई थी कि जाट आरक्षण की मांग को लेकर चला आंदोलन संगठन के नेताओं के हाथों से निकल गया और सड़कों पर उतरे हुजूम बेकाबू हो गए। अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद प्रकाश सिंह ने बताया कि उनकी जांच के दायरे में मुख्यतः हरियाणा के वो शहर थे जहां आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी और नुकसान भी सबसे ज्यादा हुआ था।
कमेटी ने यह तय किया था कि जो जिले ज्यादा प्रभावित हैं वहीं हम लोग जाएंगे, तो 8 जिलों को हम लोगों ने चिन्हित किया। रोहतक, झज्जर, जींद, हिसार, कैथल, भिवानी, सोनीपत और पानीपत, ये 8 जिले हम लोगों ने चिन्हित किए कि ये जिले ज्यादा प्रभावित रहे, इसलिए इन जगह दौरा किया जाए। इन सभी जिलों में हम लोग गए और हमारा जो काम करने का तरीका था कि जिलों में पहले तो हम जो घटनास्थल थे, मुख्य मुख्य घटनास्थल जो थे, सब जगह तो संभव नहीं हो सका, पर जहां बड़ी बड़ी घटनाएं हुई जिनकी चर्चा अखबारों में सुर्खियों में रही, घटनास्थलों पर गए। वहां पे जो लोग घटना से प्रभावित हुए थे, जो विक्टिम्स ऑफ क्राइम थे, उनसे बात की, उनका वर्षन सुना।
प्रकाश सिंह का कहना था कि जांच के दौरान 2217 से ज्यादा हिंसा पीड़ितों ने कमेटी से मिलकर अपने आवेदन सौंपे।
करीब 143 वीडियो फुटेज भी पूरे हो गए थे जिनका हमने परीक्षण किया। सारे जिलों में मिला के 2217 इतने आदमी हम लोगों से मिले और इसमें से करीब 395 ऐसे थे जिन्होंने अपना स्टेटमेंट वहीं पे रिकॉर्ड करवाया।
हालांकि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, मगर प्रकाश सिंह ने संकेत दिए हैं कि लगभग 30 प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जिनकी भूमिका पर उंगली उठाई जा रही है। वहीं हरियाणा सरकार ने जाटों के लिए आरक्षण दिए जाने का अध्यादेश भी जारी कर दिया है, जिसके तहत तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में उन्हें 10% और प्रथम और दूसरी श्रेणी की नौकरियों में 6% आरक्षण देने की बात कही गई है। हालांकि अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने हरियाणा सरकार की पहल का स्वागत तो किया है, मगर संगठन अपनी अन्य मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दे रहा है। संगठन के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने BBC से बात करते हुए कहा,
हमारी मांग तो ये थी कि जो OBC को, BC को जो हरियाणा में बोला जाता है, उसमें 20% SC को रिजर्वेशन है, 30% रिजर्वेशन उसमें होना चाहिए क्लास 1 और 2 में भी, तो वो हालांकि इन्होंने नहीं किया है, लेकिन उसकी मांग जारी रखेंगे। अभी जो मिला उसका धन्यवाद करते हैं।
यशपाल मलिक का कहना है कि आंदोलन के दौरान जिन जाट समुदाय के लोग मारे गए उन्हें सरकार मुआवजा भी दे।
BBC इंडिया बोल। रियो ओलंपिक में जबकि सिर्फ 3 महीने शेष हैं, इस बात पर विवाद है कि कुश्ती के 74 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करे। नरसिंह यादव, जिन्होंने विश्व प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, या सुशील कुमार, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भारत के लिए 2 पदक जीते हैं। क्या रियो जाने के लिए दोनों के बीच मुकाबला होना चाहिए? यही है विषय शनिवार 14 मई के इंडिया बोल का। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शाम 7:30 से 8 बजे के बीच इन नंबरों पर फोन करें 1811-7000 और 1811-7001।
बीबीसी इंडिया बोल।
1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में यूं तो जीत भारत की हुई थी, लेकिन कम से कम एक मौका ऐसा आया था जब पाकिस्तानी नौसेना भारतीय नौसेना पर भारी पड़ी थी। 9 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस हंगोर ने भारतीय युद्धपोत आईएनएस खुखरी को दमन के तट के पास टॉर्पीडो फायर कर डुबोया था। खुखरी के कमांडर कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला ने नौसेना की परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने पोत के साथ जल समाधि ली थी, जबकि वो खुद को बचा सकते थे। उन्हें इस वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया था। कैप्टन मुल्ला की 90वीं वर्षगांठ पर उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
भारतीय नौसेना में ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है कि अगर कोई युद्धपोत डूब रहा हो तो उसका कैप्टन भी उसके साथ जल समाधि ले। ये महज एक नौसैनिक परंपरा है और उसका भी हाल की नौसैनिक लड़ाइयों में कभी पालन नहीं किया गया है। 1982 के फॉकलैंड युद्ध में दोनों पक्षों के कुल 7 युद्धपोत डुबोए गए, लेकिन सभी के कैप्टन्स न सिर्फ बच निकले बल्कि उन्होंने अपने संस्मरण भी लिखे। 23 मई 1941 को लॉर्ड माउंटबेटन का पोत एचएमएस केली नौसैनिक एक्शन में डूब गया, लेकिन वो अपने पोत के साथ समुद्र के गर्त में नहीं समाए। लेकिन कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला दूसरी मिट्टी के बने थे। 6 दिसंबर 1971 को आईएनएस खुखरी को कमांड कर रहे कैप्टन मुल्ला को आदेश मिला कि वो आईएनएस कृपाण के साथ मिलकर दमन के इलाके में घूम रही पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस हंगोर को नष्ट करें। लंबी दूरी से टोह लेने की अपनी बेहतर क्षमता के कारण हंगोर को पहले ही खुखरी और कृपाण के होने का पता चल गया। हंगोर के कैप्टन लेफ्टिनेंट कमांडर तस्नीम अहमद ने, जो बाद में रियर एडमिरल बने, हमें बताया कि उन्होंने पहला टॉर्पीडो कृपाण को निशाना लेकर चलाया था, लेकिन वो उसके नीचे से गुजर गया, फटा ही नहीं।
ये पहला टॉर्पीडो तो बिल्कुल हमें सिस्टम ट्रेन किया, हर चीज था, हमारा सिस्टम फॉलो कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स यस कह रहे थे, हर चीज को कहते हैं, सारी ग्रीन लाइट थी, बिल्कुल हमने फायर किया, टॉर्पीडो भी चला, उसने बाद में उसको टारगेट को एक्वायर भी किया, लेकिन क्योंकि वो उसके नीचे से गुजर गया, एक टेक्निकल फॉल्ट है। कुकरी मेरे तकरीबन पोर्ट साइड से गुजर रहा था हाई स्पीड पे, तो फिर मैंने टर्न राउंड करके हाई स्पीड पे ये फिर कुकरी पे फायर किया, उसके पीछे से फायर किया उसको, तो वो ये जो टॉर्पीडो था फिर इसने एक्वायर कर लिया फौरन, क्योंकि पीछे नॉइज बहुत होता है, ये होमिंग टॉर्पीडो था और मेरा ख्याल को 1.5 मिनट की रन थी। और उसके बाद ये जो कुकरी का मैगजीन अपना, जिसमें ये अपना एक्सप्लोजिव कैरी कर रहे थे, उसके नीचे ये एक्सप्लोड हुआ। तो मेरी अपनी जजमेंट ये है कि जैसे टॉर्पीडो एक्सप्लोड हुआ वो मैगजीन भी एक्सप्लोड हुआ और जहाज मेरा ख्याल 2 मिनट या 3 मिनट के नीचे नीचे सिंक शुरू हो गया।
जिस समय हंगोर का टॉर्पीडो खुखरी के बीचों बीच लगा, उसमें सवार भारतीय नौसैनिक आकाशवाणी का रात का 8:45 पर होने वाला समाचार बुलेटिन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी है, अब आप अशोक वाजपेयी से समाचार सुनिए। समाचार शब्द पूरा नहीं हुआ था कि पहले टॉर्पीडो ने खुखरी को हिट किया। कैप्टन मुल्ला अपनी कुर्सी से गिर गए और उनका सिर लोहे से टकराया, उनके सिर से खून बहने लगा। उस समय लेफ्टिनेंट समीर कांत बसु वहां मौजूद थे। उन्होंने सुना कि कैप्टन मुल्ला चीफ योमन से कह रहे थे कि वो पश्चिमी नौसेना के प्रमुख को सिग्नल भेजे कि खुखरी पर हमला हुआ है।
8 बजे ड्यूटी खत्म करके मैं तुरंत वार्डरूम में जाके खाना खाया और आके हमारा एक काउशेड होता था तो वहाँ पे हम लोग जस्ट रिलैक्स करने आए थे। इसी वक्त 8:45 के करीब धमाका हुआ। उस धमाके से तो हमें लगा कि पीछे का कुछ उड़ गया है, वो चेहरों अलार्म होना स्टार्ट हो गया। अलार्म सुनते ही मैं ऊपर में चले गए। ऊपर में जाते जाते एक ब्लास्ट और हुआ, उसमें जहाज एकदम लिस्ट हो गया था स्टार्बर्ड साइड को। फिर लाइट खत्म हो गया था क्योंकि जनरेटर बंद हो गया था, बॉयलर रूम में हिट हुआ था। ओनली आई सॉ कैप्टन मुल्ला टेलिंग द योमन, योमन मींस द सिग्नल मैन, टू मेक टू एफओसीएनसी ईस्ट दैट आई एम हिट। और मुल्ला साहब बोलने लगे कि बच्चे उतरो, जो नजदीक में खड़े थे उनको सबको बोला उतरो।
खुखरी को डूबने में ढाई मिनट भी नहीं लगे। एक और लेफ्टिनेंट मनु शर्मा ने देखा कि खोखरी दो हिस्सों में टूट गया और उसका अगला हिस्सा 80 डिग्री का कोण बनाते हुए लगभग सीधा हो गया। उस समय तक पूरे पोत में आग लग चुकी थी और कैप्टन मुल्ला अपनी सीट पर बैठे रेलिंग पकड़े हुए थे। जब खोखरी डूबा तो जबरदस्त सक्शन प्रभाव हुआ और वो अपने साथ कैप्टन मुल्ला समेत सैकड़ों नौसैनिकों और मलबे को नीचे ले गया। कैप्टन मुल्ला की बेटी अमिता मुल्ला वातल इस समय दिल्ली के मशहूर स्प्रिंगडेल स्कूल की प्रिंसिपल हैं। उस समय वो मात्र 15 वर्ष की थी।
हम लोग बोर्डिंग स्कूल से लौटे थे, हम लोग शिमला में पढ़ते थे, कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी में। आई थिंक हम लोग आए थे लौट के 28 या 29 नवंबर में। हम घर में बैठे थे जब एडमिरल कुंते, तब एडमिरल नहीं थे, वो हमारे यहाँ आए और उन्होंने मुझे कहा कॉल योर मदर। तो मैं अंदर गई और मैंने मामा को बुलाया और वो हमारे बड़े अजीज दोस्तों में से थे और उन्होंने मेरी माँ से कहा दैट सुधा हिज शिप हैज़ बिन हिट। तो मेरी माँ एकदम नीचे बैठ गई ज़मीन पे, मतलब वो सोफे पे नहीं बैठी, वो ज़मीन पे बैठी और उन्होंने कहा कि अब ही इज़ नॉट गोइंग टू रिटर्न। और फिर वो अजीब तरह से कांपने लगी तो मैं अंदर जाके कंबल लेके मैंने उनको उड़ाया वो कंबल, फिर कुछ पता ही नहीं लगा। अगले दिन जाके एडमिरल कुरवेला की बीवी ने आके मेरी माँ से कहा कि सर्वाइवर्स में तो नहीं है एंड ही वाज लास्ट सीन हेल्पिंग पीपल ऑफ द शिप।
जनरल यान कार्डोजो ने खोखरी के डूबने पर एक किताब लिखी है। मैंने उनसे पूछा कि क्या खोखरी को हंगोर से बचाया जा सकता था।
यस, अगर नंबर वन सीकिंग हेलीकॉप्टर्स जो खुकरी और किरपान की हिफाजत के लिए घूम रहे थे उस इलाके में, वो 6:30 बजे शाम को चले गए बॉम्बे, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं आए। अगर रिप्लेसमेंट आना था और आना चाहिए था तो खुकरी वुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बिकॉज हंगोर हिम्मत नहीं था खुकरी को डुबाने के लिए जब तक वो सीकिंग हेलीकॉप्टर, क्योंकि दे आर एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स। ये इंटरनेशनल टैक्टिक्स है, जब किसी बैटलशिप को मालूम होती है कि सबमरीन का खतरा है तो ज़िगज़ैग पैटर्न इस्तेमाल करते हैं, तो ज़िगज़ैग पैटर्न इस्तेमाल करने से स्पीड कम हो जाती है। इसके अलावा दे वर एक्सपेरिमेंटिंग विद अ न्यू सोनार विच फर्दर रिड्यूस्ड द स्पीड ऑफ खुकरी, इसलिए खुकरी अच्छी टारगेट बन गया हंगोर को।
जिस समय कैप्टन मुल्ला की मृत्यु हुई उनकी पत्नी सुधा मुल्ला की आयु मात्र 34 वर्ष की थी।
शादी के बाद मैंने महसूस किया कि ये इतने मैच्योर आदमी हैं कि मेरी बातें तो उनको मजाक लगती होंगी, बट इनके जितने भी दोस्त थे सब जानने वाले, वो सब इनसे बड़े थे, 15 बरस 20 बरस। अपने उम्र वालों को बड़ा शैलो समझते थे, कहते थे कि मैच्योरिटी नहीं है इनके अंदर, मुझसे 13 साल बड़े थे। पर मेरे साथ तो वो बिल्कुल ठीक थे, हमारे कोई डिफरेंसेस नहीं थे, मेरी किसी भी चीज़ को इन्होंने ना नहीं किया। अब हमारी जब यूरोप में पोस्टिंग हुई लंदन में, तो मैंने कहा कि अब हम कैसे करें, मैं देखना चाहती हूँ सारा यूरोप। तो कहने कि तुम फिक्र मत करो, मैं बच्चों को देख लूँगा, इनको अभी छोटे हैं, इनको ले जाके कोई तुक नहीं है, तुम जाओ, मैं तुम्हारी जहाँ कहो यूरोप में बुकिंग कराता रहूँगा। वो कॉस्मोस टूर हुआ करते थे, तुम उसमें जाओ। इन्होंने मुझे सारा यूरोप घुमाया।
कैप्टन मुल्ला की सोच आम आदमियों जैसी नहीं थी, उन्हें ये कतई पसंद नहीं था कि सालगिरह के मौके पर तोहफे लिए या दिए जाएं।
कि साहब आप जाएंगी बर्थडे में, पर आप जाके वहाँ जोर से कहेंगी हैप्पी बर्थडे, मैं बिना गिफ्ट के आई हूँ क्योंकि आपने मुझे बुलाया है, आप जाइए। और आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और लोगों को आप पसंद आनी चाहिए, आपका गिफ्ट नहीं। और हम परेशान रहते थे, मम्मी को पीछे से जाके मम्मी प्लीज़ दे दो, लोग कहेंगे बड़े ही कंजूस बच्चे हैं इस मोहल्ले के, बिना गिफ्ट के आते हैं। और बेचारी मेरी माँ पीछे से एक टॉफ़ी का डिब्बा पकड़ाती थी, पापा नज़र रखते थे, फ़ौरन गोपाल को बुलाया जो हमारा बैरा, कहा गोपाल कहीं टॉफ़ी का डिब्बा तो नहीं लाए, चेक करने आते थे। तो अक्सर मुझे, मेरी बहन मेरे पीछे छुपती थी क्योंकि मुझसे छोटी थी, मैं वहाँ खड़े होकर दरवाजे पे घंटी बजा के, तो लोग दरवाज़ा खोल के, नेचुरली बच्चा है वो सामने देख रहा, भी कुछ आया, और मैं कहती थी आई हैव कम, तो बस वो सारे बच्चे खुसखुस करते थे मेरे बारे में।
अमिता बताती हैं कि कैप्टन मुल्ला उनका शब्द कोश बढ़ाने के लिए काफ़ी जतन करते थे, उन्हें संगीत से भी बहुत लगाव था,
स्क्रैबल्स क्रॉसवर्ड्स बहुत खेलते थे और उससे हम लोगों की वोकैबुलरी बहुत बढ़ी और उनकी फ्रेंडशिप्स बड़ी यूनिक लोगों के साथ रहीं। अख्तरी बाई हमारे घर आती थी क्योंकि पापा गाना गाते थे, शेर शायरी करते थे, बड़ा ज़बरदस्त ब्रिज सर्कल था उनका, और ज़्यादातर ब्रिज सर्कल बड़े इंटेलेक्चुअल्स का होता था, हारमोनियम बजाते थे, गाते थे, जब जानकी नाथ सहाय करे तक कौन बिगाड़ करे, मतलब तरह तरह के गजलें गाते थे। मैंने कहा अख्तरी बाई आती उनके साथ गाते थे, और ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया वो उनका फेवरेट था, ठुमरी दादरा तरह तरह की चीजें, और उनको बहुत ज्यादा इल्म था म्यूजिक के बारे में।
ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना
सुधा मुल्ला कहती हैं कि कैप्टन मुल्ला अपना पूरा वेतन उनके हाथ में रख देते थे।
यही ताजुब की बात है, लोग तो बैंक में डलवा देते, अपने पास रख लेते, ये सारा पैसा ला के मेरे सामने रख देते थे कि ये मेरे महीने की आमदनी है, अब तुम्हारा जैसे जी चाहे वैसे तुम खर्चो। ये चाहते थे कि मैं जो कुछ लूँ, मेरी मर्जी हो सो लूँ, कभी टोका टाका नहीं किसी भी बात में। सब देने के बाद फिर कहते थे डार्लिंग एक इतने 100 रुपये दे देना, 200-400 देना, मुझे कैंटीन का बिल देना है और वो सिगरेट का बिल देना है। मेरी फ्रेंड्स दे फाइंड इट वेरी फनी के लिए हमारे तो हस्बैंड छूने नहीं देते, हमें सैलरी अपने बैंक में जाता है। 6 तारीख को ही आए थे और बाहर गए और फिर वापस आए, फिर कल ये मुझे लंबी बाहों की मेरी जर्सी निकाल दो क्योंकि मैं डेक पे रहता हूँ हर वक्त, तो मुझे सर्दी लगती है, तो वो मैंने निकाली थी।
आपको पता कैसे चला, सबसे पहले खबर कैसे आई?
मेरी एक सहेली है, उसका हस्बैंड आया शाम को और कहने लगा कि घबराना मत, बात कुछ नहीं है, ही इज़ वन ऑफ द सर्वाइवर्स और कुकरी टॉर्पीडो हुई है। और द मिनट ही सेड कि सर्वाइवर है, मेरा माथा ठनका, मतलब आई कांट इमेजिन हिम लीविंग एवरी वन एंड कमिंग आउट। दूसरे दिन एडमिरल आए, एडमिरल कुरविला, उन्होंने मुझे फिर कहा कि मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि सर्वाइवर्स जो आए थे उसमें कैप्टन मल्ला नहीं थे, सेलर्स थे जिसको इन्होंने किसी को लात मार के भेजा था, लोग डर रहे थे कूदने से जहाज से, तो एक को तो एक ने मुझे खुद कहा कि साहब ने लात मार के मेरी जिंदगी बचा ली।
मुल्ला चाहते तो लाइफ जैकेट पहनकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि खुखरी के लोअर डेक में सैकड़ों नौसैनिक फंसे हुए हैं और वो उन्हें चाह कर भी नहीं बचा सकते। उन्होंने तय किया कि वो अपने साथियों और जहाज के साथ जल समाधि लेंगे।
मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से वो गुजरे हैं, उनका जो एग्जाम्पल है, उसकी वजह से मैं एक बहुत अलग किस्म की इंडिविजुअल बनी। और जहाँ रहे पापा की बात, वो तो इसके अलावा और कुछ करते ही नहीं, क्योंकि उनका जो मिजाज था, उनका जो तरीका था, उनका जो वैल्यू सिस्टम था, वो ऐसी चीज़ कर ही नहीं सकता था जिसमें वो दूसरे लोगों को अबैंडन करके चले जाएं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे लड़के थे, 16-17 बरस के बच्चे थे जो वहाँ लाए गए थे स्ट्रेट NDA से, जो लोगों ने कहा था वो घबरा रहे थे, डर रहे थे, तो पापा क्या उनको छोड़ के आ सकते थे? तो फिर वो पापा नहीं होते, वो कोई और इंसान होता, क्योंकि इसका मतलब है कि जो मैंने उनके साथ ज़िंदगी बिताई, जो मैंने उनको बोलते देखा, फिर वो उस पर अटल नहीं होते, वो कोई और ही होते। वो जो वो कहते, इसका मतलब उन्होंने किया नहीं, पर उन्होंने जो कहा वो किया, और उनकी पूरी ज़िंदगी मेरे सामने आ गई, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस एक्शन से ये वही इंसान रहे, उनके कोई क्ले फीट नहीं थे, ही वॉज वॉट ही सेड ही वॉज।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
रेहान फजल की इस विवेचना के बारे में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और दिनभर की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने मालेगांव ब्लास्ट मामले की चार्जशीट से साध्वी प्रज्ञा समेत 5 अन्य अभियुक्तों के नाम हटा दिए हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह से मकोका भी हटा लिया गया है। जर्मनी की संसद के निचले सदन ने अल्जीरिया, मोरक्को और टूनीशिया को सुरक्षित राष्ट्र घोषित करने के प्रावधानों को पारित कर दिया है। इससे यहां आने वाले शरणार्थियों की संख्या कम हो जाएगी। चीन की सरकार ने कहा है कि वह अपनी सेना में बड़े सुधार करेगी और साल 2020 तक चीनी सेना साइबर युद्ध लड़ने में सक्षम होगी। लेबनानी चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह के सीरिया में सर्वोच्च कमांडर मुस्तफा बदरुद्दीन की राजधानी दमिश्क में हुए एक हमले में मौत हो गई है। दक्षिण अफ्रीका के हाईकोर्ट ने हजारों पूर्व खनिकों को देश की बड़ी सोना खदानों के खिलाफ सामूहिक कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है। BBC समाचार।
मुख्य समाचारों के साथ ही दिन भर की ये सभा यहीं समाप्त होती है। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया देवाशीष कुमार ने। आपसे हमारी अगली मुलाकात ठीक डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र में होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए पढ़ते रहिए bbchindi.com। नमस्कार।